यशोधरा, लेखक श्री मैथिली चरण गुप्त, प्रकाशक साहित्य सदन, झांसी, उत्तर प्रदेश। कथा सूत्र। कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र रूप में भगवान बुद्धदेव का अवतार हुआ था। उनकी जननी माया देवी उन्हें जन्म देकर ही मानो कृतकृत्य होकर मुक्ति पा गई। शुद्धोधन की दूसरी रानी नंद जननी महाप्रजावती ने उनका लालन पालन किया। उनका नाम सिद्धार्थ और गौतम भी था। सिद्धि लाभ करके वे बुद्ध कहलाए। सुगत, तथागत और अमिताभ और भी उनके अनेक नाम हैं। बाल्यकाल से ही उनमें वितराग के लक्षण प्रकट होने लगे थे। शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी और भी वृद्धि हुई। शुद्धोधन को चिंता हुई और उन्हें संसारी बनाने के लिए उन्होंने उनका ब्याह कर देना ही ठीक समझा। खोज और परीक्षा करने पर देवदह की राजकुमारी यशोधरा थी, जिसे गोपा भी कहते हैं, उनकी वधु बनने योग्य सिद्ध हुई। यशोधरा के पिता महाराज दंडपाणि ने संबंध स्वीकार करने के पहले वर की विद्या बुद्धि के साथ उसके बल वीर की भी परीक्षा लेनी चाहिए। सिद्धार्थ ने शास्त्र शिक्षा के साथ ही साथ शस्त्र शिक्षा भी ग्रहण की थी, परंतु शास्त्र की ओर ही पुत्र का मनोयोग समझकर पिता को कुछ चिंता हुई। तथापि कुमार सब परीक्षाओं में अनायास उत्तीर्ण हो गए। इनोटेड कामा, टूटत ही धनु भये विवाह, इनोटेड कामा बंद के अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। पिता ने उनके लिए ऐसा प्रसाद बनवाया था जिसमें सभी ऋतुओं के योग्य सुख के साधन एकत्र थे। किसी राग रंग और आमोद प्रमोद की कमी न थी, परंतु भगवान तो इसके लिए अवतीर्ण हुए नहीं थे। पिता का प्रबंध था कि जो कुछ स्वस्थ, शोभन और सजीव हो उसी पर उनकी दृष्टि पड़े। परंतु एक दिन एक रोगी को, दूसरे दिन एक वृद्ध को और तीसरे दिन एक मृतक को देखकर संसार की इस गति का गौतम को बड़ी ग्लानि एवं करुणा आई और उन्होंने इसका उपाय खोजने के लिए एक दिन अपना घर छोड़ दिया। उनके इस प्रयाण को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तब तक उनके एक पुत्र भी हो चुका था, उसका नाम था राहुल। अब इसके जन्म का उत्सव भी पूरा वो न हुआ था कि कपिलवस्तु में उनके गृह त्याग का शोक छा गया। रात को अपने सेवक छंदक के साथ कंथक नामक अश्व पर चढ़कर वे चले गए। जिस प्रकार रुग्ण, वृद्ध और मृतक को देखकर वे चिंतित हुए थे, उसी प्रकार एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी को देखकर उन्हें संतोष भी हुआ था। अपने राज्य की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने राजकीय वेशभूषा छोड़कर संन्यास धारण कर लिया और रोते हुए छंदक को कपिलवस्तु लौटा दिया। सबके लिए उनका यही संदेश था कि मैं सिद्धि लाभ करके लौटूंगा। सिद्धार्थ वैशाली और राजगृह में विद्वानों का सत्संग करते हुए गयाज पहुंचे। राजगृह के राजा बिम्बिसार ने उन्हें अपने राज्य का अधिकार तक देकर रोकना चाहा, परंतु वे तो स्वयं अपना राज्य छोड़कर आए थे। हाँ, सिद्धि लाभ करके बिम्बिसार को दर्शन देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजगृह से 5 ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके साथ हो लिए जो पंच भद्र वर्गीय के नाम से प्रसिद्ध है। निरंजना नदी के तीर पर गौतम ने तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक वे कठोर साधना करते रहे, परंतु सिद्धि का समय अभी नहीं आया था। उनका विगलित वसन शरीर आतप वर्षा श्रीत और क्षुधा के कारण ऐसा अवश और जड़ हो गया कि चलना फिरना तो दूर, उनमें हिलने डुलने की भी शक्ति न रह गई। विचार करने पर उन्हें यह मार्ग उपयुक्त न जान पड़ा और उन्होंने मिताहार स्वीकार करके योग साधना करना उचित समझा। किंतु उनके साथ ही 5 भिक्षुओं ने उन्हें तपोभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया। गौतम ने उनकी निंदा पर द्वक्पात भी नहीं किया। वे निंदा स्तुति से ऊपर उठ चुके थे, परंतु निर्बलता के कारण वे भिक्षा करने के लिए भी न जा सकते थे। इधर उनके शरीर पर वस्त्र भी न था, उसकी उन्हें आवश्यकता भी न थी, परंतु लोक में भिक्षा करने के लिए जाने पर लोक की मर्यादा का विचार भी कैसे छोड़ते। किसी प्रकार खिसक खिसक कर पास के शमशान से एक वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया और उसे धारण कर लिया। गांव की कुछ लड़कियां उन्हें कुछ आहार दे जाती थी, उसी से उनमें चलने फिरने की शक्ति भी आ गई। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें बड़ी सुस्वाद खीर भेंट की थी, उसे खाकर कहते हैं भगवान बहुत तृप्त हुए थे। एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकांत में एक अश्वत्थ वृक्ष देखा। वह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ा। अंत में वही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और वही समाधि में निर्वाण का तत्व उनको दृष्टिगोचर हुआ। इसके पहले स्वयं मार यानी कामदेव ने उन्हें उस मार्ग से विरत करना चाहा, क्योंकि वह विषयों का विरोधी मार्ग था। सुंदरी और अप्सराएं उनके सामने प्रकट हुईं, परंतु वे ऐसे ऋषि मुनि न थे जो डिग जाते। मार ने लुभाने की ही चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी। कितने भी विभीषिकाएं उनके सामने, परंतु वे अटल रहे। स्वयं जीवन मुक्त होकर भगवान ने जीव मात्र के लिए मुक्ति मार्ग खोल दिया। कर्म कांड के आडंबर की अपेक्षा सदाचार को उन्हें प्रधानता दी और यज्ञों के नाम से होने वाले जीव हिंसा का घोर विरोध किया। जो 5 भिक्षु उनका साथ छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को सबसे पहले भगवान के उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार भर में जिसकी धूम मच गई, काशी के समीप सारनाथ में ही आरंभ में उस धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ। वे भिक्षु उन दिनों वहीं थे। रोहिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु में भी यह समाचार कैसे न पहुंचता। सुद्धोधन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिए दूत भेजे, परंतु जो भी उन्हें लेने के लिए गया, वे सब उनके दर्शन उपदेश से स्वयं संसार त्यागी होकर उनके संग में दीक्षित हो गए। अंत में शुद्धोधन ने अपने मंत्री पुत्र को, जो सिद्धार्थ का बाल्य सखा था, उन्हें लेने के लिए भेजा। वो भी भगवान के संग में प्रविष्ट हो गया, परंतु शुद्धोधन से प्रतिज्ञा कर आया था, इसीलिए भगवान को उनका स्मरण दिलाना न भूला। भगवान कपिलवस्तु पधारे। रात के वे नगर के बाहर उद्यान में रहे। सवेरे नियमानुसार भिक्षा के लिए निकले। इस समाचार से वहाँ हलचल मच गई। यशोधरा को बड़ा परिताप हुआ। शुद्धोधन ने खेद पूर्वक उनसे कहा, क्या यही हमारे कुल की परिपाटी है? भगवान ने कहा, नहीं, यह बुद्ध कुल की परिपाटी है। भगवान राजप्रसाद में पधारे। सबने उनका उचित स्वागत समादर किया, परंतु यशोधरा उस समारोह में सम्मिलित न हुई। उससे कहा गया तो उसने यही कहा, भगवान की मुझ पर कृपा होगी तो वे स्वयं ही मेरे समीप पधारेंगे। अंत में भगवान उसके निकट गए, और उस समय भी इस महीयसी महिला ने उन्हें राहुल का दान देकर अपने महात्याग का परिचय दिया। मंगलाचरण। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम है निर्जनाभ। धन्य हमारा भूमिधा भार भी, जिसमें तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भुक्ति दो हो अमिताभ।